अभी आपने जो नज़म जो है वो सॉन्ग जो है वो सुना है अहमद मुखातिर का, अल्लाह ताला से जो माफी वो मांगता है, और उसमें आपने मुख्तलिफ सीन भी देखे कि अंधा है और गुंगा है और लंगड़ा है, और वो सारे सीन हमें क्या बताते हैं, और ये सीन हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते रहते हैं, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमसायों में, क्लास में, बाहर आप कहीं जाएं, और कभी कभी ना वैसे हॉस्पिटल का चक्कर लगाना चाहिए जब इयादत के लिए किसी की जाए या वैसे कभी जाने का इत्तफाक हो, तो जरूर ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, देखना चाहिए जो माजूर हैं, परेशान हाल हैं, और अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हम लखपति हैं, करोड़पति हैं, और हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं। आंख, जैसे आंख ही को देखें, आंख के बारे में एक रेसी मरीसन लिखता है कि फितरत ने हमारे एहसास को जो है बुलंद किया है, और उसने हमारी आंख को रंग का शऊर दिया, यानी आंख से रंगत हमें नजर आती है, और दुनिया और इसकी चीजों की जो असल रंग है और असल मकामात है, हम उसको देखने के काबिल हो गए, और हमारी आंख जो है इसके अंदर जो लेंस है वो उसमें खुद ब खुद मुसलसल तब्दीली होती है कि उस तक पहुंचने वाली जो शुआएं हैं, जो रेज हैं, वो कैसे उसके पास आती हैं और किस तरह हर आने वाली चीज को वो सही फोकस से देखती है। इंसान के लेंस जो है, जैसे आंख है इंसान की, ऐसा कोई भी इंसान जो है उसको पैदा नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि आंख के जो लेंस हैं लाखों करोड़ों जो है वो हड्डियों नसों को एक कामिल तरतीब में मुनज्जम करती हैं, और इसकी वजह से इंसान जो है वो देखता चला जाता है। और वैसे भी आप अगर देखें कि आंख के पीछे एक पूरी एक मशीनरी है जो काम करती है, और कान के मुतालिक के इंसानी कान का एक हिस्सा करीब करीब 4,000 ऐसी बारीक तरीन लेकिन पेचीदा मेहराबों पर मुश्तमिल है। आप सोचें, एक नहीं, एक हिस्सा तकरीबन 4,000 के करीब बारीक और पेचीदा मेहराब पर मुश्तमिल है, जो कामत और शक्ल के लिहाज से एक मुकम्मल जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप सिलसिला बनाती हैं, और इसीलिए जो आला दर्जे के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको फिर मेहराबों से तशबीह दे सकते हैं, और उनको कान से जो है ना उसकी जो है जैसे कान से कॉपी की जाती है, कि इनकी अहलियत आवाज के हर उस मददजर को जो बादलों की कड़क से लेकर हवा से हिलने वाले दरख्तों की साए साए या किसी साजीने के हर रुकन की अलहदा अलहदा सुरों से पैदा होता है, पूरी सेहत के साथ वो उसको वसूल करता है कान, और फिर दिमाग तक पहुंचाता है। और इंसानी कान की तख्लीक और तरतीब से मुतल्लिक जो सेल्स हैं वो काम करते हैं कि वो जब भी उनको कोई चीज सुनाई देती है तो वो क्या करते हैं कि फौरन उसको जो है वो सुनने के बाद जो सेल्स होते हैं उसको अपने अंदर जो है वो महफूज करते हैं, और फिर उसको आगे जो है वो पहुंचाते हैं, और उसके मुताबिक फिर जिस्म के बाकी अज़ा जो है ना वो काम करते हैं। अच्छा, कभी आप इस बात पर गौर करें कि कान का जिक्र अल्लाह ताला ने आयत नंबर 78 में सबसे पहले क्यों किया? सबसे पहले ना कान काम करते हैं। आप बिस्तर पर सोई भी होती हैं, आप उठती हैं, आपको सबसे पहले आपकी कुव्वते समात काम करने शुरू करती है। अभी आप आंखों से देख नहीं रही, दिमाग ने भी सोचना नहीं शुरू किया, लेकिन कान सुनना शुरू कर देते हैं, क्या आवाज आ रही है, घड़ी की टिक टिक, अलार्म की आवाज, किसी की कोई बोली, कोई बात, कान सुनते हैं ना, और उसके बाद जो है फिर आप अपनी आंखों को जो है वो खोलते हैं, है ना, और उसके साथ ही जो है वो क्या है कि जो है वो इंसान जैसे दिल दिमाग उसकी कुव्वतें सलाहियतें जो है वो काम करती चली जाती हैं। और एक दफा पाकिस्तान में मुझे एक औरत को मिलने का इत्तफाक हुआ, उसके जवान बच्चे थे लेकिन वो जो थे वो ठीक नहीं थे, बोल नहीं सकते थे, और जो है वो देख सकते थे, बोल नहीं सकते थे, और जिस्म का ढांचा इस तरह से था कि बच्चा बचपन में ठीक होता था, जब वो बड़ा होता था जरा सा, जैसे थोड़ा सा बड़ा होता था, तो फिर वो चल फिर नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, फिर वो बिस्तर पर लेट जाते थे। और फिर मैं उनके घर गई, विजिट किया, और बच्ची जो थी उसे इशारों से और लिखकर, उसको लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत सिखाया था। और उस बच्ची ने बकायदा एक खत सा लिखा था जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स का, अल्लाह ताला से मोहब्बत का और इजहार किया था, अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया था। तो जो है वो हमें जरूर जो है ना ऐसे लोगों से मिलना, उनको मोहब्बत देना, उनको प्यार देना। देखें वो कभी खड़ी नहीं हो सकती थी, उनमें से फिर उनका एक बच्चा मर भी गया था। इसी तरह अमेरिका में एक औरत से मिलने का इत्तफाक हुआ जिसकी औलाद ठीक नहीं थी ना, उसके दो या फिर तीसरा बच्चा भी हुआ, वो भी ठीक नहीं था। बचपन में इतना खूबसूरत, खुद माँ भी इतनी खूबसूरत, लेकिन उसके बाद जो ही वो थोड़ा सा बड़ा होता था तो फिर वो ठीक नहीं था, उसको उठाना, सारा कुछ उसके काम करना। तो ऐसी माएं जो हैं बाकी दुनिया में रहकर ऐसी आजमाई से गुजरती हैं कि वो जन्नत कमाती हैं सबर और शुक्र के साथ। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम्हें मैंने जो है वो पैदा किया और उसके बाद तुम्हें बेहतरीन जिस्म दिया, बेहतरीन अज़ा दिए। तो इन अज़ा का शुक्राना क्या है कि आंखों से कुरान पढ़ें, कायनात की निशानियां देखें, और कानों से फिर गीबत, चुगली, बहतान, झूठ, फजूल बातें ना सुने, और दिल और दिमाग में भी अच्छी बातें आए, हसद, कीना, कदूरत, नफरतें, क्योंकि दिल और दिमाग में पहले होती हैं और फिर वो बाहर निकलती हैं हमारी जबान से और हमारे जिस्म के अज़ा से। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आयत नंबर 79 में फरमाते हैं, अलम यरो इल तैरी मुसख्खरातिन फी जव्वि समा, क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा, क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा? परिंदों का हाल क्या है? मुसख्खरातिन, मुसख्खर हैं, फी जव्वि समा, आसमान की फिजा में। परिंदे जो हैं वो फिजा के अंदर उड़ते रहते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, उनको कोई नहीं थाम सकता, उनको कोई नहीं पकड़ सकता, इल्लल्लाह मगर अल्लाह। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून, इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। तो यहाँ पर भी जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि ये जो परिंदे हैं और ये कायनात के अंदर उड़ते रहते हैं, और आप देखें कि हम जब जमीन पर चलते हैं तो हमारे पांव जमीन पर होते हैं तो हम चल सकते हैं ना, हम उड़ तो नहीं सकते ना। तो अल्लाह ताला जो है वो परिंदों को कायनात में उड़ने की ताकत देता है, और किस तरह से देता है? अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जो फिजा में परिंदे उड़ते रहते हैं इनको तुम देखो। इसी बात को अल्लाह ताला जो है वो सूरत मुल्क में यूं फरमाते हैं, अवलम यरो इल तैरी फौकहुम सफाति व यकबिद नमा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा कि वो अपने परों को फैलाए हुए भी होते हैं और उनको समेट भी लेते हैं, इनको खुदाए रहमान ही थामता है, बेशक वो हर चीज की देखभाल करने वाला है। तो इन परिंदों को उड़ने की ताकत देना, आप देखें कभी गौर करें कि हवा में ऊपर फिजा में परिंदे जब उड़ रहे होते हैं कभी परों को इकट्ठा भी करते हैं, फिर कभी उनको जो है वो दोबारा फैला देते हैं। तो उनको ये करने की ताकत जो है वो कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो कि परिंदों को, जिसने इस काबिल बनाया कि वो फिजा के अंदर जो है वो तैरते रहते हैं, वो फिजा के अंदर जो है वो उड़ते रहते हैं। और अच्छा, कभी आप जरूर जब बाहर निकलें शाम में, सुबह में, और परिंदों को आप देखेंगी, परिंदे जब उड़ रहे होते हैं तो बकायदा एक उनके अंदर नज्मो जब्त होता है, इतना खूबसूरत नज्मो जब्त होता है। अच्छा, इसकी रिसर्च से ये बात भी पता चलती है कि इनके अंदर ना एक परिंदा बाकी परिंदों को लीड करता है, आप देखेंगे कि वो सबसे आगे होता है। अच्छा, जब वो उड़ते उड़ते थक जाता है ना वो फिर पीछे आके शामिल हो जाता है, फिर पीछे में से एक निकल कर आगे आ जाता है। तो यानी उनका डिसिप्लिन, उनका उड़ना, और फिर एक जगह से दूसरे जगह उड़कर चले जाना, और फिर ये रास्ता भी नहीं भूलते। जब ये बहुत बर्फानी और सर्दियों का जब मौसम आता है तो परिंदे नकल मकानी कर जाते हैं, और जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके में उड़कर जाते हैं, कई घंटों का सफर ये करते हैं, और फिर वापस जो है ना जब मौसम अच्छा हो जाता है फिर वापस अपने इलाके में जो है ना ये लौट कर आ जाते हैं। तो अगर आप बर्ड्स हिस्ट्री जो है ये पढ़ना चाहते हैं, और आप इंटरनेट पे जाएं, आप किताबों को पढ़ें, तो आपको उसे अंदाजा होगा कि किस तरह से ये परिंदे जो हैं वो कायनात के अंदर अल्लाह की कुदरत का बेहतरीन मंजर हैं। फिर आप देखें कि ये जो जहाज बनाया गया, और जहाज जो ऊपर उड़ता है, तो कहते हैं कि ये इंसान ने परिंदों से ही सीखा कि जहाज जो है वो उसका बनाना और उसका फन, तो परिंदों को उड़ते देखकर इंसान के दिल में इस बात का जो है ना वो ख्याल आया। तो ये सारी बातें फिर किस चीज की तरफ मतवजो करती हैं कि कोई है जिसने इस कायनात को सजाया है, कोई है जिसने इस कायनात को बनाया है, और ये कायनात की रंगीनियां, कायनात का तनव्वो, कायनात का हुस्न पुकार पुकार कर ये कहता है कि अल्लज़ी अहसना कुल्ला शयइन खलक़ा, सूरत सजदा आयत नंबर 7, कि वो जिसने जो चीज बनाई खूबसूरत बनाई। सुन अल्लाह अल्लज़ी अतकना कुल्ला शयइ, ये अल्लाह ताला की कारीगरी है कि जिसने हर चीज को इंतहाई कमाल से पैदा किया। सूरत नमल आयत 88। तो फिर जब अल्लाह ताला की जो बनाई हुई कायनात की चीजें हैं और नेमते हैं, उसके हुस्नो जमाल से हम फायदा उठाते हैं, उसकी नेमतों से हम फायदा उठाते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम जो हैं वो तौहीद परस्त बन जाएं, हम एक अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाएं, और शिर्क जो है उसको अपनी जिंदगी से जो है वो बिल्कुल जो है वो उतार कर फेंक दे, निकाल कर फेंक दे। ये सारे जो दलाइल हैं कि जो पीछे से आप पढ़ती चली आ रही हैं, और यहाँ पर जो है वो खास तौर पर अब जो परिंदों का जिक्र किया जा रहा है, परिंदे हवा में बिल्कुल ऐसे हरकत करते हैं जैसे मछली पानी में, है ना। आप देखें भारी जिस्म होता है और हवा कितनी लतीफ होती है, लेकिन जमीन पर परिंदे गिरते तो नहीं है। परिंदों के पर, उनकी दुम की साख्त, ऐसा तवाजुन है कि जमीन की ग्रेविटी जो है कश्य सकल उसको अपनी तरफ नहीं खींचती, और हवा की लताफत उनको नीचे नहीं गिराती। तो बड़े आराम से वो परों को फड़फड़ाते हैं, फैलाते हैं, और जब चाहे बंद कर लें, जब चाहे उनको समेट लें। तो ये है सारी बात कि जब हम इन सारी नियमतों का इस्तेमाल करें तो क्या करें। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यूमिनून, इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो के ईमान लाने वाली है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन, और वो अल्लाह ही है जअल लकुम, जिसने बनाया तुम्हारे लिए, मिन बुयूतिकुम तुम्हारे घरों को, कि तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए बनाया क्या, सकनन बायसे सुकून, सुकून की जगह बनाया। वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमी, और उसने बना दिए तुम्हारे लिए जानवरों की खालों से, बुयूतन घर, तस्तखिफूनहा, और वो घर जो है तुम उनको हल्का महसूस करते हो। घर कैसे हैं, बड़े ही हल्के, तस्तखिफूनहा, कि जब तुम उन घरों को, ये जो खेमे हैं, ये टेंट हैं, और अरब के लोग जो थे क्या करते थे, गल्लाबानी और सैरो सियाहत, तिजारत, निकले रहते थे सफर में हर वक्त। तो उनके जो घर होते थे वो कैसे घर होते थे, हल्के, और ऐसे यानी खालों से बने हुए, जानवरों की खालों से, स्किन से बने हुए डेरे घर ऐसे कि जब चाहते थे उसको समेट लेते थे, जब चाहते थे उसको जो थे वो फैला देते। आपने खानाबदोशों की जिंदगी देखी होगी, खैमे इसी तरह जो है वो लगाते हैं और फिर उठा लेते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उसको याद दिलाते हैं कितना सखीफूनहा कि तुम इनको हल्का पाते हो। यौम जानिकुम, किस दिन? कूच के दिन। और जान जो है चारे और पानी के लिए कूच करना, अपने रोजगार के लिए कूच करना। तो मानी इसके क्या है कि तुम नकल मकानी के दिन जब तुम कूच करते हो, जब तुम निकलते हो, तो तुम्हें अपने खेमे बड़े हल्के लगते हैं, अपने घर बड़े हल्के महसूस होते हैं, भारी नहीं होते। यौमा इकामतेकुम, और ठहरने के दिन भी, जब तुम ठहरते हो तो बड़े आसानी से तुम उनको दोबारा लगा लेते हो, मुश्किल तो नहीं होती। फमिन अस्वाफिहा, और इनकी ऊन से, अस्वाफिहा और इनकी ऊन से, ये जो भेड़ मेंढे के जिस्म से उतारी हुई जो ऊन होती है उसको सौफ कहते हैं, और इनकी ऊन से, वह औबारेहा और ऊंटों के रूओं से और रेशम से। तो ये जो बबर है ये ऊंट और परिंदों के बालों को कहते हैं, और इनके बालों से, ऊंटों के रूओं से, वो अशआरेहा और इनके बालों से। तो अशआर जो है इसमें इंसान समेत तमाम जानदारों के बाल शामिल हैं। बस आ रहा, और जानवरों के बालों से, असासन व मतान, दो बातें हैं। असासन क्या है? घर का सामान है, व मतान और तुम्हारा फायदा उठाना है। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपने हालात पर गौर करो, पहले जिस्म पर तवज्जो दिलाई के गौर करो, है ना, उसके साथ ही आसमान परिंदों की तरफ तवज्जो दिलाई। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपने घर, अपने खेमे, उन पर तो जरा गौर करो। और आप घरों में आप देखें कि जिस नेमत का अल्लाह ने सबसे पहले जिक्र किया है वो क्या है, बड़ी खूबसूरत बात है, वो क्या है भला? वो तो यहाँ पे इस आयत में, वल्लाह उजाला लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, घरों को बायसे सुकून बनाया। तो असल बात जो है वो क्या है कि घर तो बहुत से हैं, अमीरों के, गरीबों के, छोटे बड़े, बादशाहों के महल भी हैं, झोपड़ियां भी हैं, लेकिन असल जो नेमत है कि घर को सकन, घर बनाने का फलसफा और हिकमत बताई कि असल मकसद घर का ये है कि सुकून। इंसान जब थका हारा, जब दिन भर की मेहनत मशक्कत करके जब वो अपने घर में आए तो घर आते ही उसको सुकून मिले। और अब आप देखें कि सुकून जो है वो घर में इंसान को हासिल करना है, और ये घर की सबसे बड़ी सिफत है कि घर में सुकून हो। और जो जो तरक्की हो रही है, तरक्की उरूज पर है, दुनिया में तामीरात हो रही हैं, तहजीबो तमद्दुन जो है, जाहिरी टेप टाप सब चीजों पे लोग बहुत खर्च करते हैं, लेकिन ये कि सुकून खत्म होता चला जा रहा है। लड़ाई झगड़े, मुश्किलात, परेशानियां, और आलीशान महल हैं वहां पे सुकून नहीं है, लेकिन झुग्गी में, झोपड़ी में जो रहता है उसको सुकून है ना। तो गरीब लोग आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहते हैं, और अमीर लोग जो हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। चार वो मुझे अक्सर, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ और मेरे अपने दिल को असल में ये बड़ी मुतासिर करती है कि पहले घर इतने बड़े नहीं होते थे, छोटे होते थे और बच्चे ज्यादा होते थे, है ना, और मोहब्बत प्यार से बच्चे रहते थे कि खिलौने को सारे शेयर कर लेते थे, माँ बाप इतनी मशक्कत में नहीं होते थे, वो के माना के पैम्पर नहीं थे और सुई गैस नहीं थी और लकड़ियां और सारे मसाइल थे, बड़ी मोहब्बत प्यार थी, फैमिली सिस्टम था, मिलजुल कर रहते थे और पढ़े लिखे भी अच्छे। यानी आज जितनी एजुकेशन हमें नजर आ रही है तो इसकी बेस में तो हमारे पेरेंट्स ही है ना। अब अगली जो जनरेशन आएगी और वो आगे फिर उसके उनके बच्चे क्या करते हैं, ये तो बात की बात है ना। लेकिन आप देखें कि मोहब्बत प्यार से रहते थे, मेहमान नवाजी कितनी होती थी, स्टेटस इतना लोगों का बुलंद नहीं था। अब दौलत बड़ी आम हो गई है, लेकिन उसके साथ क्या है कि मयारे जिंदगी जो बढ़ रहा है तो मयारे इंसानियत गिरता जा रहा है। आपस में एक दूसरे की इज्जत करना, एहतराम करना, हमसायों की खबर हो, उनकी खैर खैरियत का पता हो, किसी की खुशी गमी में हम शिरकत कर सके, किसी की बीमारी में, किसी की मर्ग में, है ना। तो सुकून, सुकून बहुत बड़ी दौलत है। और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों में सुकून पैदा करें। और वो कैसे पैदा करेंगे कि हम देखें कि हमारे कौन कौन से रवैये से घर में जो है ना वो लड़ाई होती है, परेशानी होती है। बाज लोगों को ऊंचा बोलने की बड़ी आदत होती है, बुलारा बहुत करते हैं, है ना। और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि अब खैर नहीं है, मम्मी ने बोलना शुरू किया। और बाज अवकात वालिद भी कहते हैं कि बेटा अब तुम साइड पर कहीं हो जाओ, तुम्हारी अम्मी जो है ना बोलना शुरू हो गई है ना। और बाज अवकात अम्मी बोलती है, बाज अवकात अब्बू भी बोलते हैं वैसे तो। और कभी क्या होता है कि वही बात आराम से भी हो सकती है। मसलन एक घर में जो है वो एक गिलास टूटा और माँ ने नाराज होना शुरू किया और बच्चे को मारा, तो बाप ने आगे बढ़कर कहा कि मैं तुम्हें ना पूरे एक दर्जन गिलास ला के दूंगा, तुमने बेटे को क्यों मारा। तो एक गिलास तो टूट गया, वो जुड़ नहीं सकता, तो तुम मार कर जो घर का निजाम और सुकून खराब कर रही है उसका क्या फायदा ना, है ना। तो गिलास जिस तरह इंसानों की उम्रें होती है ना, चीजों की भी उम्रें होती हैं। बर्तन है, गिलास है, जेवर है, चीजें हैं, कभी गुम हो जाती हैं, कभी टूट जाती हैं, फट जाती हैं। और मैं तो ये समझती हूं कि अब इंसानों की उम्रें कम है और चीजों की उम्रें ज्यादा है। एक ही साल कपड़े को पहन ले, बर्तन को इस्तेमाल कर लें, कंबल को, चीजों को, वो पड़े हुए होते हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है ना। तो क्या करना चाहिए कि घर तो बहुत है, बुयूत तो बहुत है, पर सुकून है कि नहीं, ये एक सवाल है जो आपसे भी है और मेरा अपने आप से भी है कि घरों में सुकून कैसे पैदा हो और उस सुकून को बरकरार रखने के लिए मैं और आप कैसे किरदार अदा कर सकती हैं। कि बाज़ औक़ात जो है वो खाना वक्त पर पकाया हुआ हो तो घर में सुकून रहता है। जैसे पता है हमें बच्चों ने आना है घर स्कूल से, शोहर ने जॉब से आना है, तो खाना तो पका होना चाहिए ना। तो जब हम उसमें ताखीर करते हैं तो घर का निजाम खराब होता है। अब पता है कि मेरे शोहर की तनख्वाह जो है वो एक वीक की $500 है या 1,000 है, जो भी है, मुझे उसमें वक्त गुजारना है, तो फिर मैं उसे ज्यादा खर्च क्यों करती हूँ या क्यों करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरी दोस्तें या मेरी सगी बहनें, उनका जो स्टेटस है वो मेरा नहीं है, तो मैं अपनी बहनों की तरह मैं क्यों रहना चाहती हूँ, है ना। जेवर, कपड़े, या किसी के पास बड़ा घर है, मेरे पास अगर छोटा घर है, तो मैं क्यों सोचती हूँ कि मेरे पास बड़ा घर क्यों नहीं है। तो छोटा और बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, असल चीज ये है कि दिल बड़े होने चाहिए, ईमान से भरे हुए होने चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो और एक बहन अपनी वालदा की बात बताती हैं और कहती हैं कि हम चार बहन भाई थे और हमारी वालदा, हम चार बहन भाई अगर मुख्तलिफ चार चीजें कहते थे, वो चार मुख्तलिफ चीजें हमें पका के देती थी। इतनी मोहब्बत से और इतनी इज्जत एहतराम से हमारे माँ ने हमें पाला। इसी तरह एक बहन बता रही थी कि मेरे शौहर जो है वो ऊपर होती हैं, बच्चा बेटा उनका बड़ा नीचे होता है, तो कहती हैं कि 6 दफा भी उनको सुबह उठकर आना पड़े ना अपने बेटे को उठाने के लिए। मोहब्बत प्यार से कहते हैं कि मेरे बेटे उठ जा, प्यारे बेटे उठ जा, बेटा मुझे देर हो रही है, मैंने ऑफिस जाना है, उठ जा नमाज के लिए, बेटा उठ नमाज पढ़ लेना। तो हम क्या करते हैं, हम घर के सुकून को कैसे खराब करते हैं। उठे, सबको पता चल जाता है आप उठे हुए, है ना, एक तूफान है ना, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूं। तो नज़म आपने सुबह कभी याद की होगी। तो असल बात यह है कि बहुत जरूरत है अपने अपनी ऑडिटिंग करने की। पैसों की तो बहुत करते हैं ना, अपने इखलाक की, अपनी बातों की और अपने मिजाज की, ये जो ये ब्लड प्रेशर, शुगर, ये जो बीमारियां हैं, और ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं, असल वजह क्या है, हमारे मिजाज अब बहुत डिफरेंट हो गए हैं। तो जरूरत है कि हम उनको ना कंट्रोल करें, दवाइयों के बगैर हम ठीक हो जाएंगे। और शुगर क्यों हो जाती है, हाय मेरी नंद का तो घर बन गया, मेरा घर ही नहीं है। जेठ का तो, अब वो जेठ ने तो दूसरा घर भी ले लिया, मेरा घर ही नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अच्छा उसकी तो बेटी को शादी हुई तो साथ ही उसके बच्चा पैदा हुआ। मेरी बेटी के तो अभी तक हुई नहीं, शादी भी नहीं हुई और बच्चा कहाँ। उसके बेटे ने मेरे साथ ही ग्रेजुएट किया था, उसकी तो 30-40 हज़ार की जॉब भी लग गई और मेरे बेटे को तो अभी जॉब ही नहीं लगी। यानी हसद की बीमारी और उसके साथ ही नफरत की बीमारी और फिर खाम खा बहुत से गम हमने खुद अपने ऊपर पाल रखे हैं। और जब तक हम खुद कम कम नहीं ना करेंगे, कोई हमारे उस गम को कम नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो है वो घरों का असल मकसद सुकून उसका जिक्र करते हैं। तो घर वो अच्छा है जिसमें सुकून, और सुकून उस घर में हो सकता है उस घर के रहने वालों के जिनके दिल और दिमाग में सुकून है, पुरसुकून। वो कहीं फौतगी हो गई और बाहर वाले रोते पीटते हुए आ रहे थे, घर वाले सुकून से बैठे हुए ना दुआ कर रहे थे, है ना। तो दिल का सुकून जो है ये दुनिया की सबसे कीमती नेमत है। और कुरान मजीद हर चीज की ना रूह बताता है, हर चीज की असल बताता है। तो घर का असल मकसद क्या है, तो सुकून हासिल करो। जैसे अल्लाह ताला मियां बीवी के जब शादी की बात करते हैं रिश्ते की, के तुम्हारा जोड़ा बनाया क्यों, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे के पास सुकून हासिल करो। तो आज जितनी तरक्की है, जितनी चीजें हैं, जितनी ज्यादा नेमतें हैं, जितनी ज्यादा एजुकेशन है, जितनी ज्यादा रोशनी है, चांद पर इंसान चला गया, लेकिन यह कि सुकून खत्म होता जा रहा है घरों का। जो जितना ज्यादा आगे जाता है वो चाहता है, ये एक है तो कहता है दो कैसे हो जाए, दो है तो कहता है तीन कैसे हो जाए। जो एक है वो फिर लाख की सोचता है, जो लाख है फिर वो करोड़ की सोचता है, फिर वो आगे लखपति की सोचता है। तो सुकून खत्म हो गया। तो असल बात क्या है, वल्लाहु जाला लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। और इसमें एक और अहम बात है कि शौहर के घर आने से पहले, बच्चों के घर आने से पहले, हाँ, कोशिश ये होनी चाहिए कि घर साफ हो, खाना पका हुआ हो, खुद भी साफ सुथरे हों। कुछ ऐसे ही हम रूटीन बनाए, पूरे हफ्ते का ऐसा एक डिसिप्लिन बनाए कि पता हो कि क्लास के ये जो दिन है मेरे, तो बाकी दिन जो मेरे पास हैं तो कैसे मैं सेटिंग करूंगी खाने की चीजों की, कि घर के अंदर एक वकार, एक डिसिप्लिन, एक हुसन आए। और जरूरत है इस बात की कि बच्चे जब घर आए तो हमें जो है वो उनको लगे कि मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही थी, है ना। हम क्या कहते, लो इतनी जल्दी तुम आ गए, मैंने तो अभी खाना ही नहीं पकाया, वो अभी ने तुम्हें छोड़ा था और अभी तुम आ गए, अभी तुम्हारे लेने का वक्त हो गया, है ना ये बात। तो ये कैसे होगा पैदा, अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और उसके बाद अपने आप को मक्खी की तरह ना फोकस कर लेना चाहिए, शहद की मक्खी उसकी तरह फोकस कर लेना चाहिए अपने नस्मुलैन पर। कभी अपने मिशन से आगे पीछे नहीं होना और सुबह से इब्तदा करना। सूरज की किरणें जो है वो तो बाद में निकलती है, मुसलमान को तो कहा गया कि उससे भी सुबह जो है वो अपनी जिंदगी की जो है वो इब्तदा कर। आगे बढ़ते हैं, वजाल लकुम मिन जुलूदिल अनआमी बुयूतन तस्तखिफूनहा। तो यहाँ पर जानवरों की खालों से बनाए जाने वाले खेमों का जिक्र है। और अरब लोग जो थे वो आमतौर पर मुसाफरत और खानाबदोशी की जिंदगी बसर करते थे, इसलिए उन घरों का जिक्र किया जा रहा है कि यौम अज़ानिकुम व यौम इक़ामतिकुम, कि तुम्हारे कूच करने के दिन और तुम्हारे क्याम करने के दिन, कि तुम्हारे लिए कितनी बड़ी वो नेमत है। और मैं इस बात पे सोच रही थी कि पैसे भी नहीं होते और बैंक से लेकर घर बुक करवा लेते हैं और फिर सोचते हैं अब यहाँ से जाना चाहिए, और फिर वो गले से उतरता नहीं है ना कि अब क्या करें। तो असल बात क्या है कि अपनी चादर के मुताबिक अगर हम पांव फैलाएं तो इंशाल्लाह हमारे घरों में जो है वो सुकून पैदा हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है, अमिन अस्वाफिहा व औबारिहा व शारिहा असासन व मताअन इलाहीन। और जानवरों के जो सौफ है और ऊन है और बाल है, अल्लाह ताला कहते हैं उससे तुम्हारे लिए पहनने और इस्तेमाल करने की बहुत सी चीजें पैदा कर दी। इलाहीन एक खास मुद्दत तक, एक खास जमाने तक तुम उससे फायदा उठाते हो। एक और बात बहुत अहम है, वो ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने घर बनाए और ये सारे जानवरों की जो भी ऊन है, बाल है, खाले हैं, इनसे मैंने चीजें बनाई, है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि ये मैंने कर दिया, तो असल में जो है वो अल्लाह ताला ने ही सारी नेमतें ये दी है ना, जिसका इस्तेमाल करके इंसान जो है वो क्या करता है कि इन नेमतों का जो है वो इस्तेमाल करता है, घर बनाता है अल्लाह ताला की दी हुई अकल के मुताबिक। और फिर अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के मुताबिक है ना, जो भी अल्लाह ताला ने नेमते दी हैं हम उनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये असासों व मतान से और क्या मुराद है? जैसे आप देखेंगे ऊन से और चमड़े से, अब सोफा आप इस्तेमाल करती हैं, लेदर का सोफा है ना, फिर लेदर जो है उसका बैग, जैकेट, शूज होते हैं लेदर के है ना, फिर आप गाड़ी और सामान, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि लेदर से बनती हैं, इसी तरह ऊन से बनती हैं। आप कारपेट देख ले, कारपेट है, कालीन है, फिर आप देखें कि इनसे जो चीजें हैं, स्वेटर हैं, जर्सियां हैं, जैकेट्स हैं, इसके मुताबिक वो महंगी होती हैं, जितनी जितनी वो जानवरों के परों से और चीजों से वो बनती है ना। तो आप अपनी चीजों का जो है वो जायजा लें कि जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ये सारी की सारी नेमतें क्या हैं, असासा हुआ मतान, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए असासा है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए जो है वो मता है, हमें हम इनसे फायदा उठाते हैं। लेकिन कब तक? इलाहीन, एक वक्ते मुकर्रा तक, एक खास मुद्दत तक। वल्लाहु जाला लकुम मिम्मा खलका जिलाल व जाला लकुम मिनल जिमाली अकनान व जाला लकुम सराबीला तकीकुम हर्रा व सराबीला तकीकुम बासकुम कज़ालिका युतिम्मु नेमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। फिर फरमाया कि वो अल्लाह ही तो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए, मिम्मा खलका जिलाला, कि बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए साए का इंतजाम किया। अब यहां पर देखें कि नेमत के तौर पर अल्लाह ताला साए का भी जिक्र कर रहे हैं कि वो अल्लाह ही तो है कि बनाए तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, मिम्मा इन चीजों से, इसमें से, खलका जो उसने पैदा किया, मिम्मा उन चीजों में से जो उसने पैदा की, क्या जिलालन साए। अब आप देखें कि साया जो है वो भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और खास तौर पर यहाँ पे इसका जो है वो जिक्र किया जा रहा है। और ये साया जो है इससे हम क्या फायदा हासिल करते हैं? जैसे कुदरती चीजों का जो साया होता है, मसलन दरख्त का साया है ना, और बादल का साया, या फिर जो है ये घर वगैरह का साया, तो आप सफर कर रहे हैं, आप बाहर हैं, या फिर पहाड़ है, पहाड़ों के साथ साथ जो है वो आप बैठे हैं, साया है। आप कभी वो लोग जो जाते हैं ये बारबेक्यू करने के लिए, गर्मी का मौसम है, आपने कोई बुकिंग नहीं कराई हुई अपनी पार्क की, तो उस वक्त जो है क्या करते हैं, साये को ढूंढते हैं ना कि कहीं कोई साया मिल जाए कि जहां हम जो है वो बैठ सके। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को एहसास दिलाते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारे लिए जो है वो घर नहीं बनाए, बल्कि बहुत सी चीजें बनाई और फिर इसमें तुम्हारे लिए अपनी पैदा की चीजों में साया रख दिया। और साया भी अल्लाह की बहुत बड़ी जो है वो नेमत है। और यहाँ पे जो साये का जिक्र किया गया, तो साया जो है वो किस चीज की दलालत करता है? साया तो अल्लाह की अताअत करता है ना, कि जूं जूं जो है वो सूरज ढलता जाता है, सूरज तुलू होता जाता है, उसके मुताबिक साया जो है वो तब्दील होता चला जाता है। तो ये भी क्या है, ये अल्लाह की अताअत की दलील है कि सब चीजें तो अल्लाह की अताअत करती हैं, और हमारी फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जो हैं वो अल्लाह की अताअत करने वाले बने, चीजों को इस्तेमाल करते जाएं और उसके साथ साथ अल्लाह के शुक्रगुजार जो है वो होते चले जाएं, कि ये अल्लाह है जो हमें ये चीजें जो है वो इस्तेमाल करने के लिए जो है वो ताकत फराहम करता है और नेमते अता करता है। फिर फरमाया वजअल लकुम मिनल जिबाली अकनानन, पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाह गाहें बनाई। और ये अरब के लोग थे और पहाड़ी इलाकों से गुजरते और क्या करते कि पहाड़ पहाड़ जो थे उनके अंदर पनाह हासिल करते थे, कि दुश्मन से बचने के लिए जो थे वो पहाड़ के अंदर जो थे वो छुप गए। और आप देखें कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकले तो कहाँ गए, है ना, गारे सौर। वजाला लकुम सराबीला तकीकुमुल हर्रा, और अल्लाह ने बना दिए तुम्हारे लिए कुर्ते। सराबीला पहले भी पढ़ चुकी है ना, सीन रा बा लाम कुर्ते को कहते हैं। तो उसने बना दिए तुम्हारे लिए लिबास, कुर्ते के लिए भी आता है और लिबास के लिए भी आता है कि तुम्हारे लिए लिबास बनाए, तकीकुम कि वही वौकाफिया है, बचाते हैं तुमको गर्मी से, वह सराबीला और ऐसे कुर्ते ऐसे लिबास तकीकुम बासकुम के जो तुमको बचाते हैं किसे, आपस की जंग में। तो गोया के यहाँ पे अब लिबास का जिक्र किया जा रहा है, और लिबास जो है आप ये बात पहले भी पढ़ चुकी हैं कि जिस तरह अल्लाह ने और नेमतें इंसान को दी हैं और इंसान के लिए पैदा की हैं, उसी तरह लिबास भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और लिबास की नेमत के बारे में आप सूरत आराफ में पढ़ चुकी हैं कि अल्लाह ताला ने लिबास को नाजिल किया और लिबास को नाजिल करने का मकसद क्या था, कि वो इंसान की जो है वो जिस्म की हिफाजत भी करे और उसके साथ उसके जो काबिले शर्म हिस्से हैं उनको ढांपे। सूरत अल आराफ आयत नंबर 26, या बनी आदमा कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासु तक्वा ज़ालिका खैर। ए आदम की औलाद आदम अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारे पर्दादार बदन को छुपाता भी है और वो जीनत का जरिया भी है, और तकवा का लिबास तो सबसे बढ़कर है। तो अब यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है, और खास तौर पे सबसे पहले गर्मी के लिबास का जिक्र किया। क्यों कहते हैं कि चूंकि वो अरब में गर्मी ज्यादा थी, सर्दी तो होती नहीं थी और होती है तो सर्दियों के मौसम में जरा कम हो जाती है, लेकिन ज्यादातर उनको गर्मी से सांप का पेश आता है। तो तुम्हारे लिए जो है वो क्या किया कि लिबास बनाया गर्मी से बचाने वाला, जिसका मतलब यह है कि मौसमी लिहाज से सर्दी है या गर्मी, लिबास जो है वो फायदा देता है। अब आप देखें कि ये जो गर्मी में सन बर्न जो हो जाता है, बाहर निकलते हैं तो अब उसके कितने क्रीम तो कितनी लोशनें तो कितनी जैकेटें तो कितने एसी तो कितनी चीजें, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये लिबास एक बहुत बड़ी नेमत है जो तुम्हें अता की। और इसी तरह ये जो है वसरा बीला तकीकुम बासकुम के आपस की जंग में हिफाजत के लिए भी तुम्हें लिबास दिया, तो ये कौन सा लिबास मुराद है? हाँ, वो जरा बख्तर, वो जो खुद वगैरह लोहे का जो लिबास पहना जाता है कि जिसकी वजह से जो है वो दुश्मन जो है उससे महफूज रहता है। अब आप देखें कि बुलेट प्रूफ जो है वो लिबास, उसकी इस्तेलाह भी इस्तेमाल होती है, और कहते हैं कि इसमें सबसे बेस्ट लिबास जो होता है बुलेट प्रूफ में, वो स्पाइडर जो है ना उससे जो वो बनाती है, हाँ जाल से जो बनता है वो सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होता है। और आपको ये बात तो पता ही है कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा जो था वो पिघला दिया था, है ना? और फिर वो लोहे से क्या करते थे, जब लोहा अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पर उनको दिया और वो पिघला दिया, तो सूरत अंबिया आयत 80, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, और हमने तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के नुकसान से तुम्हारा बचाव हो सके, फिर क्या आप तुम शुक्रगुजार होगे? तो अब क्योंकि लोहा उनके लिए नरम था और जंगी लिबास लोहे की जिरे उससे वो तैयार करते थे, तो इससे क्या है कि जंग में हिफाजत का जरिया। हजरत कतादा फरमाते हैं कि हजरत दाऊद से पहले भी जेरे बनती थी लेकिन वो सादा होती थी, बगैर कुंडों के और हलकों के। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने कुंडेदार और हलके वाली जेरे जो है वो बनानी शुरू की। और आजकल भी आप देख लें कि लिबास जो है वो इस तरह बनता है, कज़ालिका युतिम्मु नेमतहू, और इस तरह अल्लाह तुम पर अपनी नेमत जो है उसको मुकम्मल करना चाहता है, लअल्लकुम तुस्लिमून, शायद के तुम जो है वो फरमा बरदार बन जाओ। तो अब यहाँ पर जब अल्लाह ताला जो है वो इंसानी जिंदगी की जो जरूरियात हैं, इंसान अपनी जिंदगी में जिन जिन चीजों से फायदा उठाता है और जिन जिन नेमतों का इस्तेमाल करता है, तो अल्लाह ताला उन नेमतों का जिक्र करते हुए साथ ही तकमीले नेमत का जिक्र करते हैं, है ना? बैरूनी जरूरतें, खारजी जरूरतें, अंदरूनी जरूरतें, और अल्लाह की नींदें तो इतनी हैं कि अगर हम लिखने बैठे तो स्याही खत्म हो जाए, समंदर का पानी खत्म हो जाए, और दरख्त जो है सारे कलम बन जाए तो कलम भी खत्म हो जाए, लेकिन वो मुकम्मल जो है वो हम उसको बयान ना कर सकें। तो ये सारी नेमतें जो हैं, इनमें सबसे बड़ी नेमत क्या है नेमतों का इस्तेमाल करते हुए, लअल्लकुम तुस्लिमून, कि तुम मुसलमान हो जाओ। और सूरत माईदा आयत नंबर 3 में आप ये बात पढ़ ही चुकी कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम इस्लाम दीना। तो अल्लाह ताला ने जो है क्या किया कि दीन इस्लाम जो है वो नेमत के तौर पर अता किया, ये सबसे बड़ी नेमत है। तो सारी नेमतें पाने के बाद फिर अल्लाह का हो जाना चाहिए, फाइन तवल्लो फइन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा काम क्या है, अलैकल बलागुल मुबीन, तुम्हारा काम ये है कि साफ साफ बस पैगाम इनको पहुंचा दो। अब यहाँ पे गोया के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप अच्छे तरीके से दावत को इन तक पहुंचा दें, बलागुल मुबीन, खोल कर बयान करना अच्छे से दलाइल के साथ। इसके बाद जो है वो जबरदस्ती उनको मनवाना नहीं है, कहना मानते हैं ये नहीं, इस्लाम कबूल करते हैं ये नहीं, फिर जो है वो मैं जानूं और ये जाने। इसीलिए आप ये बात देखें, इसीलिए क्या बात पता चलती है कि जो भी मुबल्लिग है जब वो तबलीग करता है, दावा देता है, तो आखिर में क्या कहता है, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम यह है कि बात पहुंचा देना। और जो भी तबलीग करने वाला है वो कभी पावर पॉइंट तैयार करता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री लाता है, कभी वो पोएम, कभी वो साइंस की रिसर्च की तहकीक लाता है, कभी वो कहता है कि आराम से अच्छे से सुनाऊं बात ताकि लोग जो है वो समझ जाए, है ना। तो इन सारी बातों का मकसद क्या है कि ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बात पहुंचाई जाए ताकि इतमामे हुज्जत हो जाए, कोई ये ना कहे कि बात समझ में नहीं आएगी। और ये जितनी आयतें हैं ना, ये बेहतरीन आयतें हैं जो कि हम अपने बच्चों को भी अगर बताए ना, और किसी को भी हम दावा देना चाहें ना, तो हम साथ में साइंस की तहकीक, डॉक्यूमेंट्री और चीजें सामने रख कर फिर बच्चों को दें, तो इंशाल्लाह और ज्यादा वो इस्लाम को अच्छे तरीके से दिल की गहराइयों से कबूल करेंगे। कि इतने साल पहले अल्लाह ताला ने ये बातें बता दी जो अब लोग जो है वो समझ रहे हैं, है ना। तो लोग दीन की तरफ जो है वो आएंगे, यारिफून नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा, कि वो अल्लाह के इस एहसानात को पहचानते भी हैं फिर इसका इनकार भी करते हैं। मतलब क्या है कि मानते हैं ये सारी बात कि सारा कुछ जो पैदा किया है ये अल्लाह ने पैदा किया है, समझते हैं कि नेमतें पैदा करने वाला, सलाहियतें अता करने वाला और नेमतों से माला माल करने वाला अल्लाह है। लेकिन अफसोस कि इसके बाद लोग क्या करते हैं, किसी और का शुक्रिया अदा करते हैं, किसी और को सजदा करते हैं, किसी और को गंज बख्श और मुश्किल कुशा कहते हैं, किसी और को देवी और देवता जो है वो मानते हैं। यौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन थुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफरू। और अल्लाह ताला यहाँ पे फिर कयामत की याद दहानी करवाते हैं, जिक्र होता है नेमतों का और फिर उसके साथ ही जिक्र होता है हिसाब किताब का, कयामत का। अल्लाह ताला कहते हैं इन्हें कुछ होश भी है, इन्हें कुछ याद भी है, इन्हें कुछ एहसास भी है। यौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, कि जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, थुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफरू, और फिर इनको इजाजत नहीं दी जाएगी जिन लोगों ने कुफर किया, उन लोगों को मौका ही नहीं दिया जाएगा, उनको ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि कोई वो उजर पेश करें, वला हुम युस्तातबून, और ना ही उनसे जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार का मुतालबा किया जाएगा। अताबा ऐन ताबा, उसके मानी क्या है कि उस वक्त जो है वो चाहेंगे कि कोई उजर कोई बहाना पेश करके हम अपने आप को अल्लाह की पकड़ से जो है वो बचा सके। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि वो दिन इतना सख्त होगा कि उस दिन जो है वो बस इतमामे हुज्जत की जाएगी और फिर हिसाब किताब होगा। आप देखें कि दुनिया में भी हमें कोई काम कहता है और हम सोचते हैं कि हम उसको ये एक्सक्यूज कर देंगे, दिल में ख्याल आता है मैं उसको ये कह दूंगी, ऐसे कह दूंगी, मैंने ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया। कभी बच्चों के लिए कहा कभी दोस्तों के लिए, कभी टीचर के लिए, कभी पड़ोसियों के लिए, कि इयादत क्यों नहीं की और ताजियत क्यों नहीं की और मुबारकबाद क्यों नहीं दी, वक्त पे खाना क्यों नहीं पका, टेस्ट की तैयारी क्यों नहीं की, बहुत से एक्सक्यूज होते हैं ना। लेकिन जब वो शख्स हमारे सामने आता है बाज़ औक़ात, तो वो सारे भुर करके और फुर करके उठ जाते हैं। अब समझ नहीं आती कि अब क्या कहें कि ये काम क्यों नहीं किया, या ऐसा क्यों नहीं हुआ, या मुझे, मैंने ऐसे क्यों किया था ना। दुनिया में भी ऐसा होता है ना कि इंसान वहां पे चुप का चुप रह जाता है। तो यहाँ पे हशर का जो मैदान है उसका मंजर पेश किया जा रहा है कि अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी, हर उम्मत हर फिरके से एक गवाह लाया जाएगा, और हर उम्मत में से मिन कुल्ले उम्मतिन शहीदा कौन है, नबी होगा, उम्मत का नबी। फिर उसके बाद वो नेक बंदे, वो लोग, वो नेक मुसलमान जिन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक आगे जो है वो पहुंचाया, और जो इनकार करने वाले हैं उनको माजरत, एक्सक्यूज, उजर, हुज्जतें, बहाने, रुजू करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अतबा गुस्सा, अब अल्लाह का जो गुस्सा होगा उसको दूर करने का उस वक्त उनसे मुतालबा नहीं किया जाएगा। ला यस्ता तबून, ला युस्ता तबून, इसके क्या मानी बताए किए बताए जाते हैं। एक तो इसके मानी ये हैं कि उनसे रुजू या अताब दूर करने का मुतालबा नहीं किया जाएगा, कि वो रुजू कर ले यानी लौट आए अल्लाह की तरफ, या फिर ये है कि वो गुस्से को दूर करे यानी उस वक्त अल्लाह को राजी करने की फिक्र करे, है ना। और दूसरे मानी क्या है कि उन्हें अपने रब को राजी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो तो दुनिया में था, दुनिया दारुल अमर है और आखरत दारुल जजा है, तो जो कुछ करना था वो दुनिया में करना था। वहुम ला युस्ता तबून वाइजार अल्लाजीन जलमुल अजाबा, और ये जालिम लोग जब देखेंगे, के जालिम लोग जब क्या देखेंगे, रल्लजीन जलमू, जिन्होंने जुल्म किया था, कुफ्र किया था, शिर्क किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी, जब ये अजाब को देखेंगे कि फला युखफ्फफु अन्हु, जब वो अजाब को देख लेंगे तो लम्हा भर भी थोड़ा सा अजाब भी उनसे कम नहीं किया जाएगा, जरा सा अजाब कम नहीं किया जाएगा। आप देखें जैसे आग है ना तेज की जाती है, तो आखिरत की आग 69 दर्जे ज्यादा है। और मैंने आपको वो हदीस सुनाई थी कि जहन्नुम की तह में डेप्थ में 70 ईयर में एक पत्थर जाके स्टोन पहुंचा था, और जोर से गिरने की सहाबा को आवाज आई थी, और फिर आपने बताया था कि 70 साल लगे हैं एक पत्थर को जहन्नुम के नीचे पहुंचने में। तो आप सोचें जो इतनी गहरी और वो इतनी डरावनी और वो इतनी जला देने वाली, इतनी सख्त है वो जहन्नुम के, और वो क्या कहेगी, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, फला युखफ्फफु अन्हुम वला हुम युनज़रून, और उन्हें लम्हा भर की भी मोहलत नहीं जाएगी। जैसे आप कहते हैं कि मुझे 5 मिनट दे दे, 5 सेकंड, आप बच्चों को उठाती हैं, बच्चे कहते हैं 2 मिनट, 1 मिनट, मैं भी उठ जाता हूं, है ना। पेपर में आपका पेपर मुकम्मल नहीं हुआ, टेस्ट कंप्लीट नहीं किया, आप कहते हैं टीचर 5 मिनट मोर, 10 मिनट, 15 मिनट, है ना। तो वहां पे कोई मेकअप टेस्ट नहीं है, कोई सप्ली नहीं है, कोई चांस नहीं है, और कोई मिनट भी नहीं है, एक लम्हा आगे पीछे नहीं होगा। वला हुम युनज़रून वाइज़ार अल्लज़ीन अशरकू, और जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था, जब वो लोग देखेंगे उन लोगों को जिन्होंने शिर्क किया था, वो किनको देखेंगे, शुरका हम, अपने ठहराए हुए शरीकों को, अपने माबूदों को, वो गंज बख्श और मुश्किल कुशा, और दुनिया में जो उन्होंने अपने देवी और देवता बना रखे थे उनको देखेंगे, तो क्या कहेंगे, अजाब में है, तकलीफ में है, ऊपर से वो नजर आ गए, पालू वो बोलेंगे रब्बना हाउलाई शुरका उन लजीना कुन्ना नदउ मिन दूनिक, कि ये वो हमारे शरीक थे जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। अब वो क्या चाहेंगे, अब वो ये चाहेंगे अताअत करने वाले कि जिनकी हमने अताअत की इनको पकड़ लिया जाए और हमें छोड़ दिया जाए, और उनको देखते ही अपने माबूदाने बातिल जो थे ना उनको कहेंगे कि जो है वो ये थे जिनकी वजह से हमने ये किया था, ये हैं हमारे माबूद, अल्लाज़ीना कुन्ना नदउ मिन दूनिक, जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। अब क्या वो चाहेंगे, वो ऐसा क्यों कहेंगे, वो ये चाहेंगे कि किसी तरह जो है हम बच जाए और सारी मुसीबत इन पर जो है वो आ जाए, तो इसलिए हम जो है हमने शिर्क किया। तो ये थे जिनकी हम पूजा करते थे। फअल्कौ इलैहिमुल कौला, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं पस वो उन्हें जवाब देंगे। लकिया होता है ना, मुलाकात करना, लकिया। आप पीछे सूरत अल-बकरा में पढ़ चुकी हैं कि जब वो मिलते हैं आपस में, मुनाफिक और यहूदी, और तो क्या कहते हैं, है ना? तो मानी क्या है इसके, वाल को, और उस वक्त वो डालेंगे, फाल को वो जवाब देंगे, इलेहिम इनकी तरफ। अब माबूद जो थे वो बोलेंगे, और वो अब जो उनकी फॉलोअर्स थे अपने फॉलोअर्स से कहेंगे इलेहिमुल कौला, क्या कहेंगे, इन्नकुम लकाज़िबून, तुम बिल्कुल झूठे हो, है ना? क्या मतलब है इसका? वो कहेंगे कि हमने थोड़ी इनको कहा था कि हमारी ये बंदगी करें और पूजा करें, भला अल्लाह का कौन शरीक हो सकता है? वो भी वहां पे मुनकिर हो जाएंगे। वो अलकौ इलल्लाहि यौमइज़िनिस्सलाम फदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, उस वक्त ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे। वो दिन इतना सख्त होगा, वो अलकौ, वो सब मुलाकात करेंगे, आजिज हो जाएंगे, वो सब झुक जाएंगे, इल्लाही अल्लाह की तरफ, यौमाइज़िन उस दिन। और झुकने का अंदाज क्या होगा? अस्सलामा, कंप्लीटली ओबीडियंसी, मुकम्मल अतात और फरमाबरदारी। जो खुदा थे झूठे वो भी, और जो उनकी पूजा करते थे वो भी। सूरत अलहकाफ जो है उसमें आयत नंबर 5-6, सूरत मरियम आयत 81-82, सूरत अलंकबूत आयत 24-25, सूरत अलकहफ आयत 52, इन सब में जो माबूद और जो उनके फॉलोअर्स है ना, अल्लाह ताला ने उनकी मकालमा बाजी जो है ना उसका जिक्र किया है। और सूरत यूनुस में तो आप पीछे पढ़ ही चुकी, फकफा बिल्लाही शहीदा शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतकुम लगाफिलीन, है ना? तो आप ये बात पढ़ ही चुके हैं कि वो कहेंगे कि हमें तो खबर भी नहीं कि ये हमारी इबादत करते थे। तो आप सोचें कि वो दिन कितना सख्त होगा कि सारे उस दिन अल्लाह के आगे झुक जाएंगे। फदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और उनकी सारी ये जो बातें थी ना, ये जो भी उनकी ये झूठ और शिर्क और कुफर, ये सब खत्म हो जाएंगी। यफ्तरून जो घड़ा करते थे, अल्लज़ीना कफरू वसद्दू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, खुद काफिर बने, वसद्दू और रोका और दूसरों को रोका, कहां से, अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबी बिमा कानू युफ़सिदून। उनको जो है ज़िदनाहुम, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हम ज्यादा देंगे उनको, हम अल्लाह अपने लिए कहते हैं ज़िदनाहुम, हम ज्यादा देंगे, अज़ाबन अज़ाब, फ़ौक़ल अज़ाब, अज़ाब पर अज़ाब, बिमा कानू युफ़सिदून, उनके उस फसाद के बदले जो वो दुनिया में चुकाते रहे, जो दुनिया में उठाते रहे, दुनिया में फसाद भरपा करते रहे। अब आप देखें कि जिस तरह जन्नत में मुख्तलिफ दर्जात होंगे, जहन्नुम में मुख्तलिफ दरकात होंगे, आप पढ़ चुकी ना, दरक मुख्तलिफ स्टेजेस होंगी। अब कुफार के अजाब में भी क्या है कि मुख्तलिफ उनके दर्जे होंगे, जिसने जो खुद गुमराह हुआ और दूसरों को गुमराह किया, उसका अजाब दूसरों की निस्बत शदीद होगा। कोई गलत फैशन करते हैं अपने अपने ड्रेसअप होने में, मेकअप करने में, अपना घर है, रिश्तेदारी, कोई भी गलत काम, खुद गलत करना और दूसरों को भी गलत गाइड करना। किसी की तलाक हो जाती है, किसी के घर लड़ाई हो जाती है, बीवी रूठ कर चली जाती है, 100 मसाइल होते हैं, उसमें किसी का भी जो हिस्सा है, तो क्या होगा कि गलत बात कही और दूसरे लोगों ने गलत बात मान ली, तो दुगना अजाब। इसी तरह जिना, जिसने सबसे पहले जिना किया है और आखिर तक जो जिना करेगा उसके नामाए माल में हर एक के जिना का हिस्सा डाला जाएगा। जिसने पहला कत्ल किया, हाबील और काबील, दुनिया में जितने कत्ल होते रहेंगे तो जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे के हिस्से में हिस्सा लिखा जाता रहेगा जिसने पहला कत्ल किया था। तो ये है कि दुगना अजाब, और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका, उन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे, सजा पे सजा देंगे। और ये वजह क्या थी कि वो दुनिया में फसाद करते रहे। अब आप देख लें कि यहाँ पर जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उसमें झूठ बोलना, इफ्तरा करना, कुफ्र करना और फिर फसादी बनना। और आज की जो आखिरी आयत है वो क्या है, वयौम नबसू फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से इन्हें खबरदार करो, इन्हें डराओ उस दिन से, वो दिन कैसा दिन होगा, यौमा नबसू फी कुल्ले उम्मतिन शहीदा, कि हम हर उम्मत में से एक गवाह को जो है वो खड़ा करेंगे, हर उम्मत में से एक गवाह। तो आपको ये बात तो पता ही है ना, आप पढ़ी चुकी कि कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आप ये भी पढ़ चुकी हैं कि वल तकुम मिनकुम उम्मती यदउना इलल खैरी व यामुरूना बिल मारूफ। आप ये भी पढ़ चुकी कि आप जो हैं शोहदा लन नास हैं, आप उम्मत वस्त हैं, आप दुनिया की बेहतरीन उम्मत हैं। और आप सोचें कि सबसे पहले जब अल्लाह की अदालत लगेगी तो नबियों को खड़ा किया जाएगा, और नबियों के बाद जो है सबसे आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और बताएंगे कि ए अल्लाह ताला, तूने मुझे जो पैगाम दिया था, मैंने तेरा पैगाम जो है वो इन तक पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद जो है उम्मत वस्त उस जगह आकर खड़ी होगी जहां पे अंबिया खड़े हुए थे, उस स्टेज पर आकर खड़ी होगी उस अदालत में, और फिर वो कहेगी कि अल्लाह ताला तूने जो पैगाम दिया था हमने इन लोगों को जो है वो पहुंचा दिया। और उस वक्त जो है कौन लोग ऐसा कह सकेंगे जिन्होंने ये काम जो था वो किया था, और अगर ये काम किया ही नहीं होगा तो फिर जो है उस वक्त कैसे जो है जाकर जो है हम गवाही दे सकेंगे। तो ये बहुत बात अहम है कि हम ये काम करें। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह वाली वो रवायत जो सूरत निसा की आयत है, कई फायदा जेना, है ना, कि फिर उस दिन क्या होगी जब सबको खड़ा किया जाएगा। सूरत निसा की फरमाइश की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह उन्होंने सूरत निसा की तिलावत करनी शुरू की। तिलावत करते जा रहे थे और आप सुनते जा रहे थे, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपने कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद बस करो, ए अब्दुल्ला बिन मसूद बस करो। और जब आपने अपना मुंह ऊपर उठाया तो आपने क्या देखा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो था वो आंखों के रास्ते पिघल कर बह रहा था, जिसने दाढ़ी को तर कर दिया था, गीला कर दिया था, लहया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी जो थी वो गीली हो गई थी, तर हो गई थी। किस गम में, किसकी मोहब्बत में, किसकी फिक्र में, मेरी और आपकी फिक्र में, कि किसी तरह लोग जो हैं वो हदायत पा जाएं और किसी तरह अल्लाह का दीन जो है वो उन तक जो है वो पहुंच जाए। और आज यही काम मेरा और आपका है। क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि हर उम्मत में से खुद उसी के अंदर से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे, वजेना बिका शहीदन अला हाउलाई, और उन एक जो गवाह हम खड़ा करेंगे और जो उसके मुकाबले में गवाही देगा, और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा किया जाएगा, और वो शहादत की तैयारी है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुलविदा के मौके पे भी कहा था कि अल्लाहुम्मा शुद अल कि अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने इन तक पैगाम पहुंचा दिया। और उन्होंने तो अपना काम कर लिया, अब मैं और आप कहाँ पे खड़े हैं। और इस बात पे सोचें, दूर ना जाएं, पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचाना है, होल वर्ल्ड, लेकिन सिर्फ घर वालों को जमा कर लें और उनसे पूछें कि क्या मैंने आपको पैगाम पहुंचा दिया। अपने रिश्तेदारों को जमा करें, पूछें कि क्या मैंने आप तक पैगाम पहुंचा दिया। हमसायों को ही जमा कर लें, और क्या हम है हमारे अंदर इतनी ताकत हिम्मत कि हम उनसे गवाही ले सके अपने हक में। हमने तो अपने बच्चों को, चिल्ड्रन जो है हमारे बच्चे, हमने तो उनको नहीं बताया, रिश्तेदारों को नहीं बताया, पड़ोसियों को नहीं बताया। सोते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, खेलना चाहते हैं, मॉल शॉपिंग दुनिया स्टेटस इसी के पीछे भाग रहे हैं, और फिर क्या होगा कि जब हम खड़े होंगे और हमसे पूछा जाएगा ना। हक ने की है दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है, खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। वनज़लना अलैकल किताब तिबयानन, और हमने किताब को नाजिल किया। तिबयानन के क्या मानी है, खोल खोल कर वजाहत करने वाली, साफ साफ वजाहत करने वाली। आपने पढ़ा ना बा या नून, लाजिम भी है और मुतद्दी भी है, खुद वाजे है और हर चीज को वाजे कर देती है। लिकुल्ले शैइन, हर चीज को। अल्लाह ताला कहते हैं कि यही वजह है कि गवाही इतनी सख्त है, जिम्मेदारी इतनी सख्त है, पकड़ इतनी सख्त है कि हमने हर चीज की साफ साफ वजाहत कर दी है। कुरान इसके लिए अल किताब, किताब नहीं, नून मार्फा, अल किताब नाजिल की, कुरान नाजिल किया। और ये किताब क्या है, तिबयान के साथ साथ वह हुदन और हदायत है, वो रहमतन और रहमत है, فبشرا، اور یہ خوشخبری ہے جس کے لیے للمسلمین، یہ تبیان، ہدن، رحمت اور بشرا ان لوگوں کے لیے ہے جو سر اطاعت جھکا دے، جو مسلم حنیف بن جائیں، ہے نا؟ سر اطاعت جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے، میری نظر میں وہی سر ہے سر عامر، جسے زمانہ کاٹ تو ڈالے مگر جھکا نہ سکے۔ مسلم مسلم، ہم آج افسوس، بہت افسوس کہ آج ہم کہتے ہیں کہ پریکٹسنگ مسلم، مسلم ورڈ نے اپنی ڈیفینیشن لوز کر دی، مسلم کہتے ہی پریکٹسنگ کو ہیں، اب یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ پریکٹسنگ مسلم، افسوس ہے نا اس بات کا۔ کھانے کو کہا جائے کہ وہ کھانا جو بھوک مٹا دے تو وہ کھانا ہی کی نہیں ہے، ہم کہیں کہ ایسی وہ جو ٹھنڈک دے دے تو پھر ایسی ہی نہیں ہے، ہم کہیں کہ وہ آئس جو ٹھنڈا دے کر دے تو پھر وہ آئس ہی نہیں ہے۔ آئس کو کہتے ہیں، ٹھنڈی ہوتی ہے ہر چیز کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، آگ گرم ہوتی ہے جہاں رکھتے ہیں اس کو گرم کر دیتی ہے، مسلم خود تڑپتا ہے اوروں کو تڑپاتا ہے، خود نیک ہوتا ہے اوروں کو نیک بناتا ہے، تو کیسے مسلم بنیں گے؟ جب ہم قرآن مجید کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اس کو پھیلائیں گے، تو یہ چار بڑی نعمتیں ہمیں ملیں گی، ہر چیز مسئلے کا حل اور ہدایت، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور رحمت اور پھر خوشخبری۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور کیا دعا کرنی چاہیے، فہمِ قرآن کی دعا بھی یاد دلائی ہے نا، کہ وہ بھی آپ یاد کر لیں، ہے نا؟ اور وہ دعا کیا ہے جو ہم سب کو پڑھنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کہ تو اس قرآن کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، سینوں کا نور بنا دے، انت جل القرآن ربیع قلبی فنور صدری وجلا حزنی وذهاب همی وغمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔